ओम शांति। अभी रामलोचन भाई सेवा करने की यथार्थ विधि इसके बारे में हम सबके सामने क्लास करेंगे। सेवा करने की यथार्थ विधि। ओम शांति।
ओम शांति। हम सब परमात्मा बाप की संतान है, तो परमात्मा के पौत्रे भी ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी भी है। हम सब ब्राह्मण आत्माओं का कितना श्रेष्ठ भाग्य भगवान को जानने का, पहचानने का, उनसे बरसा लेने का और भगवान की श्रीमत प्रमाण स्वयं के जीवन को श्रेष्ठ बनाने का कितना बड़ा सौभाग्य इस संगम युग पर हम ब्राह्मण आत्माओं को मिलता है। ये ब्राह्मण जीवन कितना अमूल्य जीवन है, क्योंकि इसी जीवन में सर्व प्राप्तियां और सदा काल की प्राप्तियां सहज प्राप्त होने का समय है। फल भविष्य में हम आत्माएं सर्व प्राप्ति संपन्न होंगी, लेकिन उन प्राप्तियों का आधार संगम युग ही है। अगर अभी आप सर्व प्राप्ति संपन्न नहीं बने हैं तो भविष्य में भी नहीं बनेंगे। भविष्य का आधार वर्तमान है, तो संगम युग पर सर्व प्राप्तियां सहज और सदा काल की होती रहे उसका आधार है परमात्म आशीर्वाद, ब्राह्मण परिवार का आशीर्वाद। जिनको यह आशीर्वाद प्राप्त है वो आत्मा स्वयं को संपन्न अनुभव करेगी, लेकिन आशीर्वाद प्राप्त करने का साधन है बैलेंस। बैलेंस के आधार से ब्लेसिंग मिलती है, आशीर्वाद मिलता है। किस चीज का बैलेंस? याद और सेवा का बैलेंस। अगर इन दोनों में एक ज्यादा है एक कम है, बैलेंस नहीं है, तो ब्लेसिंग सदा नहीं मिलेगी। तो ब्लेसिंग का आधार बैलेंस, वैसे देखा गया है कि ब्राह्मण आत्माएं योग के लिए तो थोड़ा बहुत पुरुषार्थ करती हैं, लेकिन सेवा के लिए जैसे रोज योग करते हैं, वैसे रोज सेवा करनी है, ये लक्ष्य कम रहता है। और इसके कारण परमात्म आशीर्वाद या ब्राह्मण आत्माओं का आशीर्वाद सदा नहीं मिलता है। तो सेवा और योग, इन दोनों का बैलेंस आवश्यक है। जैसे हम सब आत्माएं बाबा को याद करने के लिए भिन्न भिन्न प्रकार की विधि अपनाते हैं, साकारी याद, आकारी याद, निराकारी याद, या बाप के साथ संबंधों के द्वारा याद, चाहे टीचर, चाहे सतगुरु के रूप से, चाहे मनन चिंतन करके, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार से पुरुषार्थ करते हैं कि मीठे बाबा की याद रहे। उसी प्रकार से सेवा की भी भिन्न भिन्न विधि अपनाकर निरंतर सेवा कर सकते। निरंतर सेवा करने के लिए पांच प्रकार की सेवाओं में स्वयं को बिजी रखो। पहली सेवा है सो की सेवा, अर्थात स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाने की सेवा। दूसरी है यज्ञ की सेवा, तीसरी है विश्व की सेवा, और चौथी है मनसा सेवा, और पांचवी है संबंध संपर्क के द्वारा दुआएं देने और लेने की सेवा। इन पांच प्रकार की सेवाओं में आप स्वयं को सदा बिजी रख सकते हैं। जो पांचों प्रकार की सेवा करता है उसकी निशानी है, जो पांचों प्रकार की सेवा करता है उसकी निशानी है एक तो उसके दिल से सदा यह आवाज निकलेगी कि वाह मेरा भाग्य वाह। दूसरी बात, ऐसी आत्मा को सदा अनुभव होगा कि हम परमात्म दुआओं से, परमात्म वरदान से, परमात्म आशीर्वाद से पल रहे हैं, उड़ रहे हैं। सेवा हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन हमसे कोई करवा रहा है। जब कर ही नहीं रहे हैं, तो थकने का सवाल ही नहीं। अर्थात सेवा करते हुए डबल लाइट रहेंगे। ये निशानी है अगर आप पांचों प्रकार की सेवा करते। सेवा तो सब ब्राह्मण करते ही हैं, लेकिन सेवा दो प्रकार से करते हैं। एक है रीति और नीति के प्रमाण सेवा, अर्थात जो सुना है वो दूसरे को सुना रहे हैं, जो ज्ञान सुना है, जो प्रदर्शनी समझाना समझा है वो सुना रहे हैं, समझा रहे हैं। एक है रीति और नीति के प्रमाण सेवा, और दूसरी है यथार्थ विधि के द्वारा सेवा। यथार्थ विधि के द्वारा सेवा प्रत्यक्ष फल की प्राप्ति स्वयं को और दूसरों को भी कराती है। तो सेवा में विशेषता है यथार्थ विधि की सेवा। इन पांचों प्रकार की सेवाओं में आप यथार्थ विधि यूज करो। जैसे पहली सेवा है स्वयं को संपन्न बनाने की सेवा। इसमें हर एक ब्राह्मण आत्मा पुरुषार्थ कर रही है, लेकिन कहेंगे नंबर वार, लेकिन यथार्थ सेवा अगर सब ब्राह्मण करें तो नंबर वार हटकर नंबर वन में आ जाएंगे। तो पहली बात है स्वयं को संपन्न और संपूर्ण बनाना। उसकी विधि है चारों सब्जेक्ट्स में संपन्न बनना, चारों सब्जेक्ट्स में स्वयं को संपन्न बनाना। ज्ञान, योग, धारणा और सेवा, इन चारों सब्जेक्ट्स में स्वयं को संपन्न बनाओ। अर्थात ज्ञान मूरत, याद मूरत, धारणा मूरत और सेवा मूरत बनो। मूरत अर्थात स्वरूप। देखो मूर्ति की सबसे बड़ी विशेषता है। क्या विशेषता है? चाहे देवी की मूर्ति हो, चाहे देवता की मूर्ति हो, लेकिन दोनों को मूर्ति ही कहा जाता है। ये नहीं कि देवताओं की मूर्ति को मूर्ता कहेंगे और देवियों की मूर्ति को मूर्ति कहेंगे। नहीं, सबसे बड़ी विशेषता मूर्ति की है, देही अभिमानी है, आत्म स्थिति में है, दिव्य है। तब मूर्तियों के द्वारा सेवा होती है। मूर्ति कहीं जाती नहीं है, लेकिन लोग खुद मूर्ति के पास आते हैं। अगर हम ब्राह्मण आत्माएं अगर इन चारों के मूर्ति बन जाएं, ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, धारणा मूर्त और सेवा मूर्त, तो जो सेवा की मेहनत करनी पड़ रही है ये बहुत कम हो जाएगी। सेवा आपके पास आएगी, आपको सेवा के लिए नहीं जाना पड़ेगा। लेकिन जब मूर्ति बन जाए तब ज्ञान मूर्त अर्थात जो बाप दादा के द्वारा ब्राह्मण आत्माओं को ज्ञान मिल रहा है, उस ज्ञान को हूबहू धारण करना। तो ज्ञान की धारणा का आधार है एक तो बुद्धि की दिव्यता। ज्ञान की धारणा का आधार है बुद्धि की दिव्यता और मुरली सुनते सुनते एक पॉइंट रोज अपने लिए ले लेना कि आज मुझे सारा दिन इस बात पर पुरुषार्थ करके धारण करना है। यह आप करके देखो कितना सहज संपन्न बन जाएंगे। आप सोचो थोड़ा, अगर एक पॉइंट आज आपने लिया कि मुझे आत्मा को यह पॉइंट आज धारण करनी है और उस पॉइंट पर अगर सारा दिन आपने अटेंशन रखा, 10 घंटा 12 घंटा 14 घंटा जो भी अटेंशन रखा, तो वह पॉइंट क्या आपके संस्कार के रूप में नहीं आ जाएगी? बन जाएगी ना। सोचो अगर एक दिन में एक पॉइंट धारण करो तो एक महीने में कितनी पॉइंट हो जाएगी? सोचो थोड़ा, क्या संपन्न बनने में देरी लगेगी? लेकिन ये हम करते नहीं हैं। क्या करते हैं? पूरा मुरली सुनते हैं, फिर सोचते हैं जो पॉइंट अच्छी लगेगी धारण कर लेंगे। लेकिन मुरली में तो ढेर सारी पॉइंट हो जाती है, फिर अंत में कौन सी धारण करना है वो भी छूट जाती, क्योंकि ये नियम है जो चीज बहुत मिलती है और सहज मिलती है उसकी वैल्यू नहीं होती, नियम है। तो मुरली की पॉइंट बहुत मिल जाती है और सहज मिल रही है, इसलिए उसकी वैल्यू कम हो जाती। प्रैक्टिकल अपने दिल पर हाथ रखकर देखो कि मुरली की पॉइंट की वैल्यू हमारे पास कितनी है। कई तो ऐसे बाबा के बच्चे हैं, मुरली शुरू हो जाती है उसके बाद आते हैं। कई तो आधा क्लास पूरा हो जाता तब आते हैं। क्या उनको भगवान के महावाक्य की वैल्यू है? नहीं। क्यों? सोचते हैं कोई बात नहीं, मुरली अगर हम आधा क्लास के बाद पहुंचे तो मुरली तो रखी होगी, पढ़ लेंगे। सुनते सुनते एक पॉइंट ले लो कि आज मुझे यह धारण करना है। इससे सबसे बड़ा फायदा ये होगा कि आपका मन और बुद्धि जो सारा दिन फ्री रहती है वो इसमें बिजी हो जाएगी। नहीं तो प्रैक्टिकल देखो, हम अपने मन और बुद्धि को टोटल फ्री छोड़ा हुआ है। मेरे समझ से अगर आप चेक करो तो 95% मन फ्री है, जो चाहे सोचे। अगर आप मन को इतना फ्री रखोगे तो कहा गया है खाली मन शैतान का घर, तो वो मन फिर शैतानी की बात सोचेगा, पास्ट संस्कार की बात सोचेगा, फिर दिव्यता आ नहीं पाएगी। क्योंकि जो संस्कार पहले से हैं, अगर उनको और सोच लिया तो और पक्के हो जाएंगे। इसलिए अपने मन बुद्धि को काम दो, रोज एक पॉइंट धारण करने का लक्ष्य लो, संपन्नता जल्दी आ जाएगी। दूसरी बात है बुद्धि की दिव्यता। ये तो आप बाबा की मुरली में सुनते ही हैं कि शेरनी का दूध सोने के बर्तन में ही ठहर सकता है, अर्थात परम पवित्र परमात्मा का ज्ञान पवित्र बुद्धि में ही ठहर सकता है। तो बुद्धि को दिव्य बनाने का आधार है मैंपन की बुद्धि को भगवान के आगे समर्पित करना। जब मैंपन की बुद्धि भगवान के आगे समर्पित कर दिया तो उसके रिटर्न में भगवान आपको दिव्य बुद्धि का वरदान स्वतः दे देगा। जैसे आप बाजार में जाते हो, पैसा देते हो, सामान लेते हो, ऐसे मैंपन की बुद्धि देना और दिव्य बुद्धि का वरदान लेना हो जाएगा। दूसरी बात है योग। योग की धारणा का आधार है अर्थात निरंतर योगी रहें उसका आधार है एक तो अशरीरी होने का अभ्यास, टोटल शरीर से न्यारे होकर बाप के पास बैठने का अभ्यास, दूसरा बाप ही हमारा संसार है, सर्व संबंध और सर्व संबंध के आधार से सर्व प्राप्तियां एक बाप से करना। तीसरी बात है एक आस, एक बल और एक के ही बल का भरोसा। यह अगर तीन बातें अपना लो तो निरंतर योगी बनने में मुश्किल नहीं पड़ेगा। अशरीरी होने का अभ्यास, यह है बाप को याद करने की यथार्थ विधि। अगर आप अशरीरी बन गए तो जैसे इस आंख से साकारी आंख से साकारी दुनिया स्पष्ट देख रहे हो, समझ रहे हो, अनुभव कर रहे हो, ऐसे तीसरे नेत्र से आप भगवान को भी स्पष्ट देखोगे, भगवान से बात करोगे, जिस स्थिति का जहां अनुभव करना चाहोगे करोगे। तो अशरीरी भाव का अभ्यास बहुत चाहिए। इसके लिए जो और दो बातें बताई, बाप से ही सब कुछ लेना है और बाबा ही हमारा सर्वस्व है, सर्व संबंधी है और हर परिस्थिति में हर समय एक आस, एक बल और एक के ही बल का भरोसा हो। निरंतर योगी बनना सहज हो जाएगा। तीसरी बात है दिव्य गुण की धारणा। दिव्य गुणों की धारणा का आधार है समय और गुणों के महत्व को जानना। समय और गुणों के महत्व को जानना, समय कितना कम है और कौन सा समय चल रहा है, और इस दिव्य गुण की धारणा से वर्तमान और भविष्य कितना ऊंचा बनेगा। जब इस महत्व को आप रियलाइज कर लेंगे, फिर यह गुण धारण करने पर अटेंशन जाएगा। देखो, एक चीज हम सबने सोचा कि काम विकार अवगुण है, यह विकार हमको इस संगम युग पर हमारे जीवन को नष्ट कर देता है। संगम युग पर, बाकी तो द्वापर कलियुग में है ही है, तो इस काम विकार को महा दुश्मन समझकर संगम युग पर मेजॉरिटी ब्राह्मण आत्माएं विजयी बन गई। लेकिन काम विकार का छोटा भाई क्रोध, वो नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा है? जो असंभव था वो तो संभव कर लिया। क्रोध क्यों नहीं जा रहा है? क्योंकि क्रोध को समझते हैं चलता है। महाशत्रु है, संगम का समय इस पर जीत पाने का है, ये अटेंशन नहीं, इसलिए क्रोध पीछा छोड़ ही नहीं रहा है। काम पर विजय मिल गई किन क्रोध पर नहीं। तो समय के महत्व को जानो कि यही समय है इन विकारों पर विजय प्राप्त करने का और गुणों के धारण करने का। लौकिक दुनिया में देखो, कोई एक स्थूल गुण धारण कर लेता है, उस गुण से उसका नाम पड़ जाता है। उदाहरण के रूप से कोई एक सन्यासी होगा, सिर्फ फल खाता है, अनाज नहीं खाता है, तो उसका नाम पड़ जाता है फलाहारी बाबा। सिर्फ एक गुण धारण किया। कोई भी एक है जो कोई कपड़ा पहनता है, ये टाट वाला कपड़ा, तो उसका नाम पड़ गया है, पता नहीं है कौन सा, जय गुरुदेव में उनका वो, मतलब एक गुण धारण करे तो उससे उसका नाम पड़ जाता है। यह तो साधारण बात है। अगर आप एक दैवी गुण धारण करो तो इनके कंट्रास्ट में कितने महान बनोगे, और जब सर्व दैवी गुण धारण कर लोगे तो कितने महान बन जाओगे। इस गुणों की महानता को समझो, और धारण करने का समय यही है, अभी है, बहुत थोड़ा समय है, फिर दिव्य गुण धारण हो जाए। चौथी बात है सेवा। सेवा का आधार है निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निःस्वार्थ भाव और निर्मल वाणी। ये यथार्थ सेवा का आधार है। निमित्त भाव, निर्माण स्वभाव, निःस्वार्थ भाव और निर्मल वाणी। तो इन चारों बातों के आधार से स्वयं को संपन्न बना सकते हो। तो पहली सेवा है स्व की सेवा, दूसरी है यज्ञ की सेवा। यज्ञ की सेवा तन और धन से कर सकते, तन और धन से यज्ञ की सेवा। इस समय जितना तन आप यज्ञ की सेवा में लगा रहे हैं, उतना आपका तन वर्तमान भी जो 63 जन्मों के हिसाब किताब वाला शरीर है, वो तन भी इस सेवा के आधार से हिसाब किताब का 75% सेवा के आधार से खत्म हो जाएगा। हिसाब किताब जो इस शरीर को भोगना है, सेवा के आधार से खत्म होगा। अनुभव होगा सबको, अगर थोड़ी बीमारी हो भी और बाबा के घर की सेवा में लग जाओ, बीमारी खत्म हो जाती, भाग जाती है। क्यों? यज्ञ की सेवा से जो दुआएं मिली, भगवान का आशीर्वाद मिला, वो हिसाब किताब को खत्म कर दिया। लेकिन सेवा में दिल से सेवा करो। ड्यूटी है नहीं, काम है नहीं, दिल से सेवा करो। बाबा ने एक मुरली में कहा था, जैसे लौकिक दुनिया में लोग समझते 8 घंटा तो ड्यूटी करनी ही है, कैसे मजबूरी से करो कैसे करो करना ही है, वो नहीं। दिल से सेवा मेरी सेवा है, मेरे बाबा की सेवा है, मुझे सेवा के निमित्त बाबा ने बनाया है, अपनापन हो सेवा में। अपनापन, मेरापन नहीं, लगाव वाला नहीं, अपनापन। मेरे बाबा की सेवा है, मेरे बाबा ने मुझे जिम्मेदारी दी है, भगवान ने मुझे इस जिम्मेदारी के लायक समझा है, भगवान ने स्वयं समझा है, इतनी प्यार से सेवा करो यज्ञ की। मान लो आप यज्ञ में है सेंटर पर, मान लो आप बर्तन साफ कर रहे हो, थोड़ा सोचो तो कि कौन सा बर्तन साफ कर रहे हैं। वो बर्तन जिस बर्तन में प्यारे परमात्मा के लिए भोग बना था, जिस बर्तन में भगवान ने स्वयं उस बनाए हुए भोग को स्वीकार किया है, भगवान ने जिस बर्तन का भोग स्वीकार किया है, मैं आत्मा उस बर्तन की सफाई कर रही हूं, वाह मेरा भाग्य वाह। इसको कहा जाता है दिल से सेवा करना। क्लासरूम में झाड़ू लगा रहे हो, सोचो किस स्थान की सफाई कर रहे हैं। जिस स्थान पर स्वयं भगवान के महावाक्य डायरेक्ट महावाक्य सुनाए जाते हैं, साधारण स्थान नहीं है, जिस स्थान को स्वयं भगवान निमित्त आत्माओं के द्वारा स्थापन कराया है, वाह मेरा भाग्य जो ये हाथों के द्वारा हमको भगवान ने इस सेवा के लायक समझा, हमको सेवा का चांस दिया, वाह मेरा श्रेष्ठ भाग्य वाह। इस भाव से यज्ञ की सेवा करो। और कहा गया है यज्ञ की सेवा मन इच्छित फल देती है। इस भाव से सेवा करके देखो आपकी सभी मनोकामना पूरी होती है या नहीं। अवश्य होगी। तो तन से सेवा करो और धन से सेवा करो। यज्ञ में इस समय जो भी आत्मा निःस्वार्थ भाव से, इस समय जो बाबा के घर में जितना लगाती है उसका 10 गुना बढ़कर अभी ही मिल जाता है। भविष्य तो पदम गुना है ही है, अभी ही बाबा दे देता है। लेकिन उस सेवा में विशेषता क्या चाहिए? गुप्त सेवा। कई जो है दिखावा की सेवा बहुत करते हैं धन में। अगर जितना हर मास देते हैं अगर उतना देना हुआ तब तो भंडारी में डालेंगे, अगर थोड़ा ज्यादा हुआ तो टीचर के हाथ में देंगे। क्या पर्पज है? यही ना कि टीचर समझे ज्यादा दिया है, मेरी खातरी करे। वो तो टीचर खातरी जरूर करेगी, लेकिन जमा नहीं हुआ, आपको उतना ही मिलके रह गया। और जमा नहीं होता है उसका प्रूफ है। कैसे समझोगे मेरा जमा हुआ या नहीं? इसका बल और फल दोनों मिलना चाहिए। बल अर्थात अगर जमा हुआ तो उसका बल है कि आपकी आत्मा में इतनी शक्ति की महसूसता होगी कि आप बुराइयों पर विजय पाते जाएंगे, योग आपका लगता जाएगा, ये बल मिलेगा प्रैक्टिकल। और फल अर्थात संतुष्टता, संगम का फल है संतुष्टता, और बल है आत्मिक बल की उन्नति। यह अगर है तो समझो जमा हुआ, और अभी का लगाया हुआ भविष्य का तो है ही अनगिनत अनगिनत। तो दूसरी है यज्ञ की सेवा, और तीसरा है विश्व सेवा। विश्व सेवा अर्थात जो भी साधन है, जितने प्रकार के भी साधन हैं, उन साधनों के द्वारा और वाणी के द्वारा विश्व की सेवा करना। जो भी आपके पास पर्याप्त साधन है या कर सकते हो उससे करो, और वाणी के द्वारा सेवा। चौथा है मनसा सेवा। बहुत सुंदर विधि है मनसा सेवा करने का, बहुत सुंदर और सहज विधि है शुभ भावना और शुभ कामना। वैसे यह शब्द कामन है, दुनिया वाले भी बोलते हैं, लेकिन उनके शुभ भावना और आपके शुभ भावना में इतना अंतर है कि आपकी सिर्फ शुभ भावना नहीं है लेकिन शक्तिशाली शुभ भावना है। उनकी सिर्फ शुभ भावना है और आपकी शक्तिशाली शुभ भावना है। करके देखो, कल प्रयोग करके देखो कि जब किसी को भी आप ज्ञान सुनाते हो या कोई भी प्रोग्राम करने जाना है, करके देखो, ये अनुभव की बात बताते हैं, तो सबसे पहले आप मनसा के द्वारा वहां शुभ भावना देकर उस स्थान व उस व्यक्ति के मन को परिवर्तित कर दो। आपकी शुभ भावना उस व्यक्ति में बाप के प्रति भाव बिठाएगी, और जितना उस आत्मा का बाप के प्रति भाव बैठेगा उतना उस भाव का फल बाप के द्वारा उस आत्मा को अवश्य प्राप्त होगा। अर्थात आप जो आत्मा उस आत्मा से जो आप चाहते थे वो प्रैक्टिकल हो जाएगा, लेकिन शुभ भावना पहले रखो। ये शुभ भावना बहुत शक्तिशाली यंत्र है, लेकिन आपकी शुभ भावना शक्तिशाली बने उसकी विधि है। कैसे आपके संकल्प जो कर रहे हो शक्तिशाली बन जाए, प्रयोग करके देखो कि मान लो आप अपने संकल्प को किसी के पास लाखों माइल दूर कहीं भी आप किसी के पास भेजना चाहते हो, चाहे शक्तियों का दान या वो बीमार है उसका दुख दूर करने का, कुछ भी है जो आप देना चाहते हो, वो संकल्प वहां तक पहुंच जाए और काम करे उसकी विधि है आपके संकल्प क्यों नहीं पहुंचते हैं। इसका छोटा सा कारण है, हमने अव्यक्त बाबा से पूछा था तो बाबा ने बताया था कि क्यों नहीं पहुंचता है। उसका कारण है कि मान लो हम और आप बैठे हैं, अब इतनी दूर में ही हमारा संकल्प क्या चल रहा है आप तक नहीं पहुंच रहा है, या आपका चल रहा है मेरे तक नहीं पहुंच रहा है, क्यों नहीं पहुंच रहा है और कैसे पहुंचे उसकी विधि है। अगर नहीं पहुंच रहा है उसका कारण है कि हमारे और आपके बीच में संसार का जो भी वायुमंडल है वो सब भरा हुआ है हमारे और आपके बीच में। जब हमारे संकल्प इतने पावरफुल हों जो इस वायुमंडल को क्रॉस कर जाएं, तब आप तक पहुंचेंगे। लेकिन आपके संकल्प से वह वायुमंडल करोड़ों गुना पावरफुल है, इसलिए नहीं पहुंचता है। पहुंचाने की विधि करके देखो, अनुभव करना। जो संकल्प आप देना चाहते हो उस संकल्प में अगर आप कुछ समय 5 मिनट तक अगर आप निराकारी दुनिया में निराकार बाप के साथ उस एक संकल्प में एकाग्र रहो, तो वह संकल्प इतना समर्थ बन जाएगा, इतना समर्थ बन जाएगा जैसे भगवान के समान हो जाए, वो संकल्प अवश्य पहुंचेगा, वो संकल्प अवश्य काम करेगा। करके देखो, लेकिन इसके लिए बाबा ने कहा था आप अपने मन बुद्धि को फ्री रखो। हमारी सबकी मन बुद्धि छोटी छोटी बातों में बहुत इंगेज है, लाइन क्लियर नहीं रहती है, इस कारण से संकल्पों में समर्थि नहीं आ रही है, शक्ति नहीं आ रही है। लेकिन लाइन क्लियर रहे उसके लिए एकांत प्रिय और एकाग्रता चाहिए। अगर यह दो बातें हैं तो एकांत प्रिय और एकाग्रता, तो आपकी लाइन क्लियर रहेगी, संकल्पों में शक्ति आ जाएगी। तो इस प्रकार से स्वयं में आप सब बातें धारण करके सेवा के द्वारा स्वयं को संपन्न बना सकते हो। ब्राह्मण जीवन का श्वास है ही याद और सेवा, निरंतर याद निरंतर सेवा। तो ये पांचों प्रकार की सेवा संबंध संपर्क के द्वारा, दुआओं की सेवा एक ही सुंदर विधि है, श्रीमत प्रमाण संबंध संपर्क में चलना। इससे आपको दुआएं मिलती रहेंगी और आप भी श्रीमत प्रमाण संबंध संपर्क में आएंगे तो आपको भी दुआ मिलेगी भी और दे भी सकेंगे। श्रीमत प्रमाण चलना ही दुआ देना है। तो ये पांचों प्रकार की सेवा करके स्वयं को संपन्न बनाओ। अच्छा, ओम शांति।